श्री उदरण दत्त ठाकुर। द्वादश गोपालों में से एक उदरण दत्त ठाकुर सात गांवों कृष्णपुर, नित्यानंदपुर, वासुदेवपुर, शिवपुर, बांसबेड़िया, सहनगढ़, सप्तग्राम के एक समूह सप्तग्राम में निवास करते थे। स्वर्ण वणिकों के परिवार में सुख साधन से के मध्य पले बड़े उदरण दत्त ने कालांतर में विवाह किया तथा एक धनाढ्य राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। वह स्थान जहाँ वे कार्यरत थे आज उनके सम्मानार्थ उद्धरणपुर के नाम से ख्यात है। नित्यानंद प्रभु प्रायः उनके गृह में वास करते थे तथा उनके हाथ से भोजन स्वीकार करते थे। सप्तग्राम में प्रेम नाम संकीर्तन कर नित्यानंद प्रभु ने साहूकारों एवं स्वर्ण वणिकों के संपूर्ण समुदाय का निस्तार किया। उद्धरण दत्त के कथनानुसार सप्तग्राम ऐसी पावन भूमि है कि उसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जब वे 26 वर्ष के थे उनकी पत्नी का अकस्मात देहांत हो गया। उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु का संग करने तथा श्री कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार करने हेतु अपना सर्वस्व त्याग दिया। उन्होंने स्वयं षडभुज महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु एवं गदाधर पंडित के अर्चा विग्रहों की स्थापना तथा पूजा अर्चना की। वे ब्रज लीला में सुबाहु सखा के रूप में भगवान बलराम की सेवा करते हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। श्री नित्यानंद प्रभु के एक महान भक्त जिन्होंने सर्वतोभावेन उनकी आराधना की, ऐसे भक्त के रूप में उद्धरण दत्त की कीर्ति गान करने के उपरांत कृष्णदास कविराज प्रभु के समस्त भक्तों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, कोई भी नित्यानंद प्रभु के अनंत अनुगत जनों की गणना नहीं कर सकता। मैंने तो आत्म पवित्रीकरण हेतु उनमें से कतिपय के नाम लिए हैं। नित्यानंद प्रभु रूप वृक्ष की शाखाओं के रूप में हैं। ये नित्य पार्षद कृष्ण प्रेम रूप पक्व फलों से परिपूर्ण हैं। उन्होंने सबको ये फल प्रदान कर उन्हें शुद्ध भगवत प्रेम में निमग्न कर दिया है। इन भक्तगण में शाश्वत अनन्य कृष्ण प्रेम प्रदान करने की असीम क्षमता है। वे किसी को भी कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। श्री उदरण दत्त ठाकुर जी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 अध्याय 24 श्लोक संख्या 67। पृथ्व्या स वै गुरुभरं शपयन् कुरूणाम्। अन्ता समुत्थकलिना युधि भूपचम्वः। दृष्ट्या विधूय विजये जयमुद्विघोष्य। प्रोच्योद्धवाय च परं समगात् स्वधाम। पृथ्व्या स वै गुरुभरं शपयन् कुरूणाम्। अन्तः समुत्थकलिना युधि भूपचम्वः। दृष्ट्या विधूय विजये जयमुद्विघोष्या। प्रोच्योधवाय च परम समगात्स्वधाम। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की पृथ्व्या पृथ्वी पर सह वह कृष्ण वै निस्संदेह गुरु भरम बहुत बड़ा भार क्षपयन पूरी तरह हटाने में कुरुनाम कुरुवंशियों का अंतः समुत्थ कलिना भाइयों में मन मुटाव द्वारा शत्रुता उत्पन्न करके युधि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भूपचम्बह सारे असुर राजा दृष्ट्या अपने दृष्टिपात से विधूया उनके पाप कर्मों को शुद्ध करके विजये विजय में जयम विजय उद्विघोष्या घोषणा करके अर्जुन की विजय प्रोच्या उपदेश देकर उद्धवाया उद्धव को च भी परम दिव्य समगात वापस गए स्वधाम अपने धाम को। अनुवाद। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने संसार का भार कम करने के लिए पारिवारिक सदस्यों के बीच मन मुटाव उत्पन्न किया। उन्होंने अपनी चितवन मात्र से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सारे आसुरी राजाओं का संहार कर दिया और अर्जुन को विजयी घोषित किया। अंत में वे उद्धव को दिव्य जीवन तथा भक्ति के विषय में उपदेश देकर अपने आदि रूप में अपने धाम को वापस चले गए। तात्पर्य। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। कृष्ण का कार्य कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में पूरा हुआ क्योंकि भगवान की कृपा से अर्जुन विजयी हुए। वह उनके महान भक्त थे और अन्य लोग भगवान की चितवन मात्र से मारे गए जिसमें उनके सारे पाप कर्म धुल गए और वे सारूप्य को प्राप्त हो सके। अंत में भगवान कृष्ण ने उद्धव को भक्ति के दिव्य जीवन का उपदेश दिया और समय आने पर वे अपने धाम लौट गए। भगवद गीता के रूप में भगवान के उपदेश ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण है। मनुष्य जीवन में ये दो बातें सीख लेनी चाहिए कि भौतिक जगत से किस प्रकार विरक्त हुआ जाए और आध्यात्मिक जीवन में किस प्रकार पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जाए। यही भगवान का प्रयोजन है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अपना कार्य समाप्त करने के बाद भगवान अपने धाम गोलोक वृंदावन लौट गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण शीर्षक 24वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इसकी पूर्ति भुवनेश्वर उड़ीसा भारत में कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना के अवसर पर हुई। नवम स्कंद संपूर्ण। हरे कृष्णा। तो प्रारंभ करने से पहले मैं सभी वैष्णवों से आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि ये दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के ऊपर गुरु परंपरा के द्वारा दिए गए संदेश को यथारूप प्रस्तुत कर सकूं। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण और इस नवम स्कंद का शीर्षक है मुक्ति। तो नवे स्कंद में हम बहुत सारे राजाओं के विषय में पढ़ते हैं। पहले सूर्य वंश के विषय में पढ़ते हैं जिसमें भगवान रामचंद्र का प्राकट्य होता है, फिर हम चंद्र वंश के विषय में पढ़ते हैं, और अभी भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो गया है इस अध्याय में, और अभी फिर आगे पूरे दसवें स्कंद में उनका विस्तार से उनकी लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य के कुछ कारण और उनका उनका उनके कार्यकलापों का, उनके रूप का वर्णन और गुणगान कर रहे हैं इस अध्याय के अंत में। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। यह भगवान श्री कृष्ण का, इसमें यहाँ पे लिखा है कार्य, पर प्रभुपाद जी ने जो इसका तात्पर्य दिया उसमें लिखा है मिशन है। तो भगवान श्री कृष्ण का मिशन प्रकट होने का मुख्य रूप से ये रहता है कि वो साधु जनों को प्रोटेक्शन देने, रक्षा करने के लिए, और जो दुर्जन हैं उनका विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। और भगवत गीता में भगवान बताते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, और धर्म की जो वास्तविक धर्म है उसकी स्थापना करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। और इस श्लोक का जो मर्म है, और बाकी शास्त्रों में और अलग अलग जगहों पर भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जैसे भागवतम का जो पहले स्कंद का श्लोक है जिसको भागवतम का बोला जाता है प्रभाष सूत्र, तो उसमें भी बताते हैं, एते चांश कलह पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मिणयंती युगे युगे। पहले दो लाइनों में बताया गया है कि सारे जितने भी उससे इस श्लोक से पहले कुछ श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी भगवान के अलग अलग अवतारों का, विस्तारों का वर्णन करते हैं, और इस श्लोक में बताते हैं कि ये सब भगवान के अंश हैं और कलाएं हैं, लेकिन जो पूर्ण भगवान है वो भगवान श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण भगवान है। और वो क्यों प्रकट होते हैं या उनके अवतार विस्तार क्यों प्रकट होते हैं, जब इंद्रारी व्याकुलम लोके मिणयंति युगे युगे, जब जो सुर हैं, जो देवतागण हैं, जो भगवान की भक्त हैं, जो भगवान में विश्वास करते हैं, श्रद्धालु लोग हैं, जब उनके ऊपर अत्याचार और जो अधर्म है और दुराचारी लोग हैं उनका जो प्रताड़ना है बढ़ जाती है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए, खत्म करने के लिए भगवान का प्राकट्य होता है। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृणयंती युगे युगे। और अभी इसी अध्याय में भी सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि बिल्कुल भगवता जैसा ही श्लोक है उसमें भी, जिसमें वो बता रहे हैं कि भगवान प्रकट होते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य शयो वृद्धिश्च पाप मनहा तदा तु भगवान ईशा आत्मानम सृजते हरि। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब परम नियंता भगवान श्री हरि स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब भगवान को फोर्स कर सकते हैं, पर भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। फिर आगे के श्लोकों में इसी में बताया जाता है कि भगवान जो है इज नेवर, उनको कोई बांध नहीं सकता भी आइए, मतलब इतना पाप हम बढ़ा रहे हैं कि आपको आना पड़ेगा, हम बढ़ाएंगे इतना पाप कि मतलब कि फिर भगवान बंद जाएंगे आने के लिए, ऐसा नहीं है। एक्चुअली भगवान बहुत दयालु हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक है, सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं यहाँ पे, ये है 24वें अध्याय का 56
जन्माया चेष्टितं पुंसः स्थित्युत्पत्त्यप्याय हि अनुग्रहस्तन्वित्तलाभाय आत्मलाभाय चेष्यते। भगवान अपनी माया के माध्यम से इस विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार का कार्य करते हैं, जिससे वे अपनी दया से जीव का उद्धार कर सकें और जीव के जन्म मृत्यु तथा भौतिक जीवन की अवधि को रोक सकें। इस तरह वे जीव को भगवत धाम लौटने में सक्षम बनाते हैं। तो भगवान की यही इच्छा है और इसी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान आते हैं कि भगवान बहुत दयालु हैं, जो पतित बद्ध जीव हैं, जो भौतिक जीवन में पूर्ण रूप से त्रस्त हैं और दुर्दशा जिनकी हो रखी है, उनको उबारने के लिए, उनको वापस अपने धाम लेके जाने के लिए, उनको सबसे सर्वोच्च सिद्धि, सर्वोच्च आनंद, सर्वोच्च सुख प्रदान करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। और यही है धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान जैसे परित्राणाय साधु नाम, तो परित्राणाय साधु नाम भगवान कैसे करते हैं कि कैसे वो जो साधु जन हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको कैसे वो रक्षा प्रदान करते हैं। पहले तो वो क्या करते हैं, विनाशाय परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो दुर्जन है, जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते और जो उत्पात मचाते हैं, ऐसे लोगों का दमन करते हैं। पहले तो जो गड़बड़ है उसको खत्म करते हैं, उसके बाद सही जो कार्य क्या करना है, अब जो साधु जन है, जो श्रद्धालु हैं, उनको भी क्या मार्ग का अनुसरण करना है, उस मार्ग को स्थापित करते हैं धर्म संस्थापनार्थाय। तो वो जो साधु हैं उनकी रक्षा करते हैं, एक तो असत संग से उनको बचाते हैं, दुर्जनों का विनाश करते हैं, और दूसरा शिक्षाएं स्थापित करते हैं, धर्म स्थापित करते हैं, जिसका वो अनुसरण करके भगवान के धाम जा सकें। तो जैसे प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवद गीता, जैसे भगवान इस तात्पर्य में भी भगवान के जो कार्य हैं उसमें बताया गया, एक तो भगवान ने गुरुजनों में युद्ध करवाया ताकि जो जितने भी दुष्ट राजा हैं, जो जो धरती पे बोझ हैं, उनका विनाश हो जाए, और फिर एक धार्मिक जो भगवान के भक्त हैं पांडव, उनका शासन हो जिसके द्वारा जो प्रजा है वो सही मार्ग को अनुसरण कर सके। और फिर बता रहे हैं कि भगवद गीता के रूप में भगवान के उपदेश अंत में भगवान कृष्ण ने उद्धव को भक्ति के दिव्य जीवन का उपदेश दिया। तो अब उद्धव जी को उन्होंने, जैसे भी 11th कैंटो में हम पढ़ेंगे उद्धव और भगवान श्री कृष्ण का जो उपदेश है, तो उद्धव जी को भगवान ने उपदेश दिया। फिर प्रभुपाद आगे बताते हैं भगवद गीता के रूप में ये उपदेश है, और अर्जुन को भी उपदेश दिया। तो ये जो उपदेश है यही भगवान का प्रयोजन है यहाँ बता रहे हैं। और जो जितने भी मनुष्य योनि में जो जीव उत्पन्न प्रकट होते हैं, जो जीव मनुष्य योनि में होते हैं, उनका कर्तव्य है कि वो इस उपदेश का लाभ उठाएं और ज्ञान और वैराग्य को सीखें। यहाँ पर बात बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन में ये दो बातें सीख लेनी चाहिए, क्या, ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य क्या है, भौतिक जगत से किस प्रकार विरक्त हुआ जाए, और ज्ञान क्या है, आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण ज्ञान। तो ये मनुष्य जीव, और ये चीज भगवान ने भगवद गीता में और अपने उपदेशों में जैसे उद्धव को, अर्जुन को ये बताया है। तो ये भगवान हमको देते हैं, एक तो दुष्टों का संहार करते हैं और दूसरा ये शिक्षाएं हमको प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं ज्ञान और वैराग्य के विषय में हमें सीखना चाहिए, और भगवान ने उद्धव को भक्ति के दिव्य ज्ञान का प्रदान किया। तो कल हम प्रभुपाद जी के प्रवचन में सुन रहे थे कि जो भक्ति का अनुसरण करने मात्र से ज्ञान और वैराग्य स्वाभाविक रूप से जीव के हृदय में प्रकट होते हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। ये श्लोक सूद गोस्वामी जी बोल रहे हैं पहले स्कंद में, कि जब कोई वासुदेव की भक्ति करता है अच्छे से, तो उसके हृदय में अपने आप ही वास्तविक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट होता है, और फिर और साथ ही साथ भौतिक जगत से वैराग्य उत्पन्न होता है। ये दोनों साथ में चलते हैं। जिसके पास ज्ञान होता है वही फिर वैराग्य का पालन कर सकता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि जो भौतिक जगत में भोग है वही मेरे कष्टों का कारण है, और फिर वो जब इस ज्ञान में स्थित होता है तो फिर वो भोग को छोड़ता है। तो भोग को छोड़ना ही वैराग्य है। तो इसका अर्थ यह है कि भगवान ने भगवद गीता में हमें भक्ति करने के लिए बोला है। भक्ति के द्वारा ज्ञान और वैराग्य स्वतः प्रकट होते हैं। तो भगवान, हम ये भी देखते हैं कि भगवान जब भी प्रकट होते हैं भक्ति को ही, जैसे धर्म संस्थापनार्थ आया, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो धर्म क्या है, कौन से धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं? तो इसमें भागवतम में बताते हैं कि सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। क्योंकि भगवान जीव को सर्वोच्च आनंद देना चाहते हैं, सुप्रसीदति कराना चाहते हैं, इसलिए भगवान भक्ति की स्थापना करते हैं। और जब जीव अहेतु की और अप्रतिहता, बिना किसी उद्देश्य और बिना रुकावट के भगवान की भक्ति में लगता है तो उसको पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है। और इसीलिए भगवान भक्ति की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। तो भगवान ने भगवद गीता में भी भक्ति का संदेश दिया है। आखिरी श्लोक में, आखिरी जो मुख्य श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी मे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो इन दोनों श्लोकों में भगवान कह रहे हैं, पहले श्लोक कह रहे हैं भक्त बनो, मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो और मेरे पास गारंटीड आप निश्चित रूप से आएंगे, ये मेरी प्रॉमिस है आपको। और दूसरे में कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, सब सारी सारी शरण छोड़ के, और फिर जो होगा मैं आपकी पूरी रक्षा करूंगा। तो भक्ति ही भगवान स्थापित करने के लिए प्रकट होते हैं। और इसको भगवत इसी अध्याय में भी बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि कैसे भगवान अपनी भक्ति स्थापित करने के लिए प्रकट होते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। कलौ जनिष्यमानानां दुःख शोक तमोनुदम् अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोद् यशः। भगवान ने इस कलयुग में भविष्य में जन्म लेने वाले भक्तों पर अहेतु की कृपा दर्शाने के लिए इस तरह से कार्य किया कि मात्र उनका स्मरण करने से मनुष्य संसार के सारे शोक संताप से मुक्त हो जाएगा। दूसरे शब्दों में उन्होंने इस तरह कार्य किया जिससे सारे भावी भक्तजन भगवद गीता में कथित कृष्ण भावना अमृत के उपदेशों को ग्रहण करके संसार के कष्टों से छुटकारा पा सकें। तो भगवान ने इस प्रकार से कार्य किए कि उनके स्मरण मात्र से, उनके जो कार्यकलाप हैं उनके स्मरण मात्र से, श्रवण कीर्तन मात्र से जो जीव है वो जो भौतिक कष्टों से तप्त है वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा और मुक्त हो जाएगा। तो ये चीज गोपियां भी बोलती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये भूरिराजना। उसमें भी यही बता रहे हैं कि भगवान की जो कथाएं हैं, जो भगवान की लीलाएं हैं, जो भगवान का कार्य, भगवान ने यहाँ पे जो भी दिव्य लीला प्रकट करी, जब इसका श्रवण कीर्तन होता है तो सारे जो तप्त हैं इस तीन तापों से, जितने भी लोग परेशान हैं वो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं और सुख का अनुभूति करते हैं। तो ये भगवान का बहुत बड़ा हमारे प्रति अनुग्रह है। और इसीलिए भगवान भगवद्गीता में कहते हैं सूर्यदम सर्वभूतानाम, भगवान हमारे वास्तव असली हितैषी हैं और वो हमको असली सुख देने के लिए प्रकट हुए हैं, प्रकट होते हैं। और परसों शिला प्रभुपाद जी का कोटेशन लगा हुआ था यहाँ पे, तो उसमें लिखा था कि भगवान के प्रकट होने का उद्देश्य होता है कि वो बद्ध जीव को बताते हैं कि आप मेरे पास आइए, मेरे साथ डांस कीजिए, मेरे साथ खेलिए, तब आपको वास्तविक खुशी और आनंद प्राप्त होगा। यहाँ पर आप आर्टिफिशियली ये सब प्रयास कर रहे हैं, इससे आप हमेशा दुखी रहेंगे। तो भगवान प्रकट होते हैं और इतनी मधुर लीलाएं प्रकट करते हैं हमको अपने प्रति आकर्षित करने के लिए। बद्ध जीव सारे के सारे कष्टों का एकमात्र कारण यही है कि वो भगवान को भूल गया है, और भगवान को भूलने की वजह से अब वो माया में अलग अलग प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है, पुनः पुनः चर्वित चर्वण आना, कि वो बार बार चबाए हुए को ही चबा रहा है, क्योंकि माया उसको आनंद चाहिए और भगवान का कोई उसको ज्ञान नहीं है। तो जब भगवान जो असली आनंद के स्रोत हैं, जब उनसे वो डिस्कनेक्ट है, पावर से कनेक्शन हट गया है, तो फिर क्या होगा, फिर वो जो प्रयास कर रहा है उससे वो क्या होगा, वो बार बार फ्रस्ट्रेट हो रहा है। तो इसीलिए भगवान देख रहे हैं कि ये कितने मूर्ख है, कितनी प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं कि ये जो मूर्ख लोग हैं ये भौतिक चीजों में ही आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और बार बार विफल हो रहे हैं, फिर भी वो प्रयास कर ही जा रहे हैं। तो ऐसे मूर्ख लोगों को सही चीज बताने के लिए प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि मैं आपके पास नहीं जाऊंगा, मैं सबको लेके आऊंगा, और भगवान भी इसीलिए आते हैं, और भगवान अपने सारे एम्पावर्ड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इसीलिए भेजते हैं कि जो प्रयास लोग भौतिक चीजों के द्वारा आनंद प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं वो उनको ज्ञान दें कि भाई सही दिशा में आप प्रयास कीजिए और फिर आप हमेशा फिर आपको असली सुख मिलेगा। बहुत ही एक अच्छा गीत है, उसमें लिखा है कि जो भौतिक बद्ध जीव है वो कैसे प्रयास करता है, तो उसमें बताते हैं, इक्षु दंड भावी काठ चुशीली माना के माने पाई भी मीठा, कि क्या है जो बद्ध जीव है वो बांस की लकड़ी को गन्ना समझ रहा है और उसी को चुबाया जा रहा है और वो सोच रहा है कि मेरे को अभी मिठास प्राप्त होगी, फिर ये इससे नहीं हुआ दूसरा बांस ले लिया, फिर तीसरा बांस ले लिया, अलग अलग प्रकार के बांस वो लिए जा रहे हैं। तो अब जो भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं वो उसको गन्ना देने के लिए प्रकट हुए कि आप इतना प्रयास कर रहे हो आप गन्ना लो, और चैतन्य महाप्रभु सबसे उत्तम गन्ना दे रहे हैं। वो रूप गोस्वामी जी ग्लोरीफाई कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, अनार्पिता चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रेयाम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा शचि नंदनः। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो कभी नहीं दिया, मतलब इस प्रकार भगवान अलग अलग अवतारों में प्रकट होते हैं, भक्ति की स्थापना करते हैं और दिव्य आनंद प्रदान करते हैं जीव को, मतलब गन्ना देते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जो गन्ना दिया है वो किसी ने नहीं दिया, मतलब वो सब सर्वोत्तम है, अनार्पित, पहले कभी नहीं दिया गया वो, तरिम चिरात कालों कालों से, मतलब चिर काल से कभी नहीं दिया गया। करुणया बहुत ही दयावश भगवान प्रकट होते हैं कलयुग में, और ये जो माधुर्य जो स्वभक्ति श्रीयाम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम, उन्नत उज्ज्वल रस प्रदान करने के लिए। तो ये हमारा सौभाग्य है, पहले तो हमको भगवत गीता भी भगवान दे रहे हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं कि कलयुग में भविष्य में जन्म लेने वाले भक्तों पर अहेतु की कृपा दर्शाने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, लीलाएं करते हैं, लेकिन फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में ही प्रकट होते हैं और चैतन्य लीला प्रकट करते हैं। और जैसे भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो उन्होंने कृष्ण लीला प्रकट की, और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो कृष्ण भगवान ने कृष्ण प्रेम बहुत सिलेक्टेड लोगों को दिया है, चैतन्य चरितामृत में आता है, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं और उनके पार्षद प्रकट होते हैं तो उन्होंने उसको सबको दिया। उसमें बहुत ही सुंदर श्लोक है चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में, जिसमें बताते हैं, लूटी या खाई या दिया भंडार उजाड़े आश्चर्य भंडार प्रेमा शत गुण बड़े, कि चैतन्य महाप्रभु ने वो जो प्रेम का भंडार था भगवान श्री कृष्ण जब आए थे तो उस पर ताला लगा हुआ था, भंडार तो आया था लेकिन उस पर ताला लगा हुआ था और कुछ ही लोग उसको प्राप्त कर पाते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु और उनके पंच तत्व जितने भी उनके पार्षद हैं उन्होंने क्या किया, वो तो संकीर्तन करते थे तो उन्होंने वो भंडार का ताला तोड़ दिया और फिर वो संकीर्तन में पूर्ण रूप से आनंद में मदमस्त हो जाते थे और सबको बांटते जाते थे, जिसको जिसकी पात्रता है भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, जब आप हमारे शरण में आओगे तब आपकी रक्षा हम करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ले लो आप, कोई बात नहीं। तो ये है चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन कि आप वो दे रहे हैं। तो इसीलिए हमें बहुत ही, अब हमारा क्या कर्तव्य, अब वो तो गन्ना दे रहे हैं हमको, तो हमारा क्या कर्तव्य है? तो हमारा कर्तव्य, ऑल दो हम कलयुग के हैं, तो कलयुग में बताया गया है कि लोगों की ज्यादा रुचि है नहीं आध्यात्मिकता में। कलयुग में तो हर प्रकार से जो लोग हैं वो गिरे ही हुए हैं, एक तरह से बताया गया है। प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता, कि प्राय जनरली कलयुग में जो लोग होंगे वो अल्पायु होंगे और हमेशा परेशान रहेंगे, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करेंगे और भ्रमित, अगर किसी की थोड़ी सी आध्यात्मिकता में रुचि भी होगी तो ये भ्रमित होगा, वो मायावाद हो या कोई अन्य जो मार्ग हैं जिनसे आध्यात्मिकता का भक्ति का विनाश हो जाता है ऐसे मार्ग अपना लेगा। तो कलयुग में बहुत ही मतलब बुरी स्थिति है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत दया करके कि भाई कलयुग के लोग तो पूर्ण रूप से मतलब फंस गए हैं वर्लपूल में, तो उनको निकालने के लिए, और सबसे, और जब भगवान दया में होते हैं तो जब कोई बड़ा व्यक्ति दयालु होता है तो वो सबसे अपना बड़ा पूरा ट्रेजर हाउस दे देता है। तो इसलिए वो भगवान की ऐसी अनुकंपा है कि वो पूरा जो समर्पित तो मुन्नत उज्ज्वल रसाम जो कभी नहीं दिया, सतयुग में नहीं दिया, पहले कभी किसी को भी नहीं दिया, बड़े बड़े ऋषि मुनि किसी को नहीं दिया। वो नित्यानंद प्रभु जी के गुणगान में लोचनदास ठाकुर जी कहते हैं ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभा करे जाचे, जो ब्रह्मा को भी नहीं मिला, जो इंद्र को भी नहीं मिला, जो शिव जी को भी नहीं मिला, वो किसको मिल रहा है? हिप्पीज को। तो ये है ये भगवान के विष, ये है भगवान की अहेतु की कृपा। तो अब हमारा क्या कर्तव्य है? ये तो भगवान की दया है, हमारा भी कुछ कर्तव्य है अगर हम इसको लेना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तो ले लो जी, कोई किसी नहीं भी, वो सो भी रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, उसको उठा के दे देते हैं। लेकिन अब अगर हमें जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए और इमीजिएटली इसको पकड़ना है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम भक्ति विनोद ठाकुर जी और हमारे आचार्य जो हैं जैसे वो बता रहे हैं वैसे इसको लें। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं उसमें अपने गीत में कहते हैं तोमार लईते आमी होइनु अवतारा आमी बिना बंधु आरा के आछे तोमारा एने छी औषधि माया नाशी बारो लागी हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मागी भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया सेई हरि नाम मंत्र लोई लो मागिया। इस पूरे गीत में भी उन्होंने भगवान के प्रकट होने का बता दिया है कि चैतन्य महाप्रभु केवल हमारे लिए प्रकट हुए, तुम्हारे लोहित आमी हो इन अवतार, और मेरे से अच्छा आपका फ्रेंड कोई नहीं हो सकता, आमी बिना बंधु आरा के आछे तुम्हारा। क्यों? क्योंकि वो हमको सुप्रीम आनंद प्रदान कर रहे हैं, जन्म मृत्यु के कष्टों से फ्री कर रहे हैं, केवल छोटी सी एक हमें मेडिसिन दे रहे हैं वो हमें लेनी है। बहुत सिंपल, हरि नाम महामंत्र, ये जो महामंत्र है हरि नाम महामंत्र, ये सारी माया का विनाश कर देगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी इस प्रपोजल को सुन के बहुत ही उत्साहित हो गए और वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया से ही हरि नाम मंत्र लोई लो मांगिया। तो इसी, तो हमको भी इसी प्रकार से आतुरता से और दीनहीन भाव से भगवान से याचना करके ये भक्ति का जो मार्ग है, ये हरिनाम जो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको हमें मांगना चाहिए। वो तो दे भी रहे हैं और हमको मांगना चाहिए, तो बिल्कुल अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। वो गन्ना दे रहे हैं और हमको लेना चाहिए, तो हमको बहुत ही उत्साह से इसको स्वीकार करना चाहिए। और जो इसको स्वीकार करते हैं भगवान उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि भगवान तो चाहते ही हैं कि भाई जो बद्ध जीव है वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो, उनके पास वापस आए। ये श्लोक में भागवतम में बता रहे हैं, भागवत अमल पुराण है, तो भगवान की इच्छा इसमें व्यक्त है कि हर किसी को भगवान अपने धाम में वापस लेके जाना चाहते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम भी इसको बड़ी आतुरता से, उत्साह से, ईगरनेस से, हेल्पलेसनेस से, सारे पूरे प्रयास से इसको हम ग्रैब करें और फिर दूसरों को भी इसके बारे में बताएं, उनको भी असली आनंद। तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा पूरी करने में हम हेल्प कर रहे हैं। तो यही थोड़े से विचार मैंने प्रिपेयर किए थे, किसी को एक प्रश्न टिप्पणी हो तो बता सकते हैं।
हरे कृष्ण जी, धन्यवाद बहुत सुंदर और मधुर प्रवचन के लिए। वैसे तो जहाँ भी भगवान का गुणगान होता है वो हमेशा सुंदर ही होता है, लेकिन जब आप जैसे शुद्ध भक्त इतनी मधुरता से प्रवक्त करते हैं तो वैसे और सुंदर हो जाता है।
शुद्ध भक्त
तो मेरा एक प्रश्न, मेरा प्रश्न एक छोटा सा ये प्रश्न था कि जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि भगवान जो अपना जो कार्य करते हैं, जो भी करते हैं, उसका जो मेन मकसद होता है बुद्ध जीव को वापस मतलब आनंद प्रदान करना या उसको अपना धाम वापस बुलाना, लेकिन मेरा एक इसमें थोड़ा सा संशय ये आता है कि फिर भगवान क्यों इतनी माया को इतना आकर्षित बनाते हैं कि बुद्ध जीव उसमें फंस जाता है जाके, और जो है मतलब लाइक उसमें ऐसा क्यों ऐसा कलयुग बनाते हैं जिसमें हमें मनुष्य इतना गिर जाता है उस कलयुग में जाकर, तो ऐसा चीज क्यों वो बनाते हैं कि जिससे निकलना ही बहुत मुश्किल होता है।
अब प्रोपाद जी इसका आंसर देते हैं कि गवर्नमेंट जेल बनाना नहीं चाहती, क्रिमिनल डिपार्टमेंट भगवान गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहती। अगर सारे जितने भी सदस्य हैं या सिविलियंस हैं वो अगर लॉ अबाइडिंग होंगे तो क्रिमिनल डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उस क्योंकि जो सिविलियन है वो गवर्नमेंट के प्रति ओबीडियंट नहीं होता, तो बाकी सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो डिसओबीडियंट सिविलियन है उसको सुधारने के लिए जेल बनाया जाता है। तो भगवान इस भौतिक सृष्टि की रचना जेल के रूप में करते हैं हमारे को सुधारने के लिए, हमें दंड देने के लिए नहीं, हमें प्रताड़ना देने के लिए नहीं कि भाई अभी मैं तुम्हें बच्चा मजा छगाता हूँ, ऐसे नहीं। हम तुमने मेरे से विद्रोह कर कैसे दिया, हिटलर की तरह नहीं है भगवान कि वो हाथ काट दें और व्यक्ति का ऐसे कर दें, वैसे नहीं है। भगवान अपने संतान को सुधार रहे हैं, ऐसे बच्चों को माता पिता सुधारते हैं, थोड़े दिन कमरे में बंद कर देते हैं, टॉयलेट में बंद कर देते हैं, तो ये है इस प्रकार से। तो वो ये और फिर वो जैसे गर्भ में जो जीव है प्रार्थना करता है कि मैं इतने जन्मों से आपको भूला हुआ था, अभी मैं आपकी भक्ति करूंगा। तो जब वो इस यातना में जो भोग के प्रति बहुत आसक्त होते हैं लोग, उनको केवल डंडा ही समझ में आता है कि भाई जब प्रताड़ना होती है तब उन्हें कहते हैं हो नहीं मैं भोक्ता नहीं हूँ, भोक्ता कोई और है, तभी तो मेरे को लात पड़ रही है। जो भोक्ता में भोग करना चाहता है वो अपने आप को भोक्ता समझता है, कंट्रोलर समझता है, उसको लगता है मेरे से बड़ा कोई है नहीं, अहम ईश्वर, ईश्वर हम भोगी सिद्धो हम बलवान, भगवान भगवीता में कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को लाइन पे लाने के लिए डंडा मारना पड़ता है। तो वो भगवान का जो डंडा है वो कृपा है। यहाँ पे प्रभात परपट में बता रहे हैं कि उनको भी सारूप्य प्राप्त हुआ जो अर्जुन के खिलाफ थे, आप सुनिए। वह उनका महान भक्त था और अन्य लोग भगवान की चितवन मात्र से मारे गए जिससे उनके सारे पाप कर्म धुल गए और वे सारूप्य को प्राप्त हो सके। तो भगवान के द्वारा, भगवान के ग्लांस, भगवान की कृपा दृष्टि और फिर युद्ध में वो शुद्ध भक्त के द्वारा मारे गए। तो अब कोई बोलेगा तो भगवान तो मरवा दिया जी, तो लेकिन वो फिर सारूप्य को प्राप्त कर रहे हैं, तो लेके ही जा रहे हैं वापस, मार के लेके जा रहे हैं या वैसे लेके जा रहे हैं। तो अब जो जो जैसे जाना चाहते हैं वैसे लेके जा रहे हैं, जो आराम से जाना चाहते हैं उसको आराम से लेके जा रहे हैं, जो डंडा आगे डंडा।
ऐसे है। यस वी उपाधि इंग्लिश में लिखते हैं ओरिजिनल फॉर्म, नहीं द्वारकाधीश वाले रूप भी ओरिजिनल फॉर्म है। अब मेरे को चेक करना पड़ेगा कि, पर भगवान के जितने भी रूप हैं, चाहे श्याम सुंदर रूप है या चतुर्भुज रूप है, सभी आदि रूप है, ओरिजिनल फॉर्म है, मतलब दिव्य हैं, भौतिक जगत के नहीं है, मटेरियल मोड्स में नहीं है, कफ वात पित्त के नहीं है। हाँ जी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, स्वेच्छा है भगवान की, और जो भक्त होते हैं वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, तो भक्तों की इच्छा पूरी करना भगवान बहुत ही, भगवान आनंद लेते हैं उसमें, भगवान उन भक्तों की इच्छा पूरा करना चाहते हैं, ये भी उनकी इच्छा है, तो वो भक्तों के द्वारा कंट्रोल्ड भी होते हैं, तो इसलिए वो भक्तों की इच्छा, भक्त वत्सल हैं वो, तो आते हैं, जब भक्त बुलाते हैं तो आते हैं। क्या क्या
मनु का भी संहार हो गया, द्रुपद का भी संहार हो गया, ये सब भी आसुरी राजाओं में से एक है।
अभिमन्यु चेक करना पड़ेगा, पर जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि सब भगवान के धाम गए, सब संहार का अर्थ है। अब इसको हम उस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि धर्म की स्थापना की भगवान ने, अर्जुन को विजयी घोषित किया, और ये एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, फिर चेक करना पड़ेगा।
पहली लाइन में भी है जैसे पारिवारिक सदस्यों के बीच मनमुटाव उत्पन्न किया, इसमें मतलब यदुवंशियों के बारे में बोल रहे हैं या फिर कुरुवंशियों के बारे में बोल रहे हैं?
इसमें तो इसी से यही प्रतीत हो रहा है कि कुरुवंशियों के बारे में बोल रहे हैं, कुरु नाम लिखा है, शपयन कुरु नाम। ग्रंथ राशिमद भागवतम की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, जिताई गौर प्रेमानंदे। शील प्रभुपाद की।